नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। 1563 अभ्यर्थियों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर आज रवाना होंगे। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में तीसरा तथा अंतिम एक दिवसीय मैच जारी और किंग्सटाउन में पुरुष 2020 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद यह पहला सत्र होगा। सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किए गए वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब नव निर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाएंगे। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस महीने की 27 तारीख को राज्यसभा का सत्र शुरू होगा और संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। भूपेंद्र सिंह के साथ अर्पिता चौधरी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा के पहले सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे और इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट का प्रसारण करेगा। संसद के समक्ष मुद्दे आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर तथा इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। परीक्षा परिणामों को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 5 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित की थी। परिणाम आने के बाद परीक्षा में अनियमितता और जालसाजी के आरोप लगे थे। नीट यूजी परीक्षा 2024 में कृपांक पाने वाले 1563 विद्यार्थियों की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। एनटीए के अनुसार पुनर्परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थियों के परिणाम पिछले महीने की 5 तारीख को हुई परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही घोषित किए जाएंगे। इस बीच आज होने वाली मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नीट पीजी स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। ये निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद लिया गया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने जर्मन भाषा प्रशिक्षण के B1 स्तर को सफलतापूर्वक पूरा करने पर 32 स्वास्थ्य पेशेवरों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में कल आयोजित समारोह में श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है जो 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कुशल भारतीय पेशेवर परिवर्तन लाने वाला और भारत का प्रतिनिधि है। जर्मन राजदूत डॉ फिलिप एकरमैन ने भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि इससे ऐसे कई अन्य अवसरों की शुरुआत होगी। आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ से संबंधित एक सम्मेलन आज चेन्नई में हो रहा है। इसमें पहली जुलाई से तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी होने पर चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों को दंडित करने के लक्ष्य के साथ भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक संहिताकरण का प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना था। श्री मेघवाल ने कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए अब भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष 2019 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से काम कर रहे हैं।
1 जुलाई से तीनों हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे जो कानून आए हैं वो लागू हो जाएंगे और इसमें ईज ऑफ जो लिविंग है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और टाइमलाइन इसमें तय की है, ये मेजर चेंज है। टाइमलाइन तय करते ही नागरिकों को न्याय जल्दी मिलेगा।
सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने कहा कि एनडीए सरकार ने तकनीकी रूप से समृद्ध दुनिया का अनुसरण करते हुए नए आपराधिक कानून प्रस्तुत किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने भाग लिया। हाल में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित विभिन्न राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ से जुड़ी कई घटनाएं हुई। इस समय असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई जिलों के लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। पिछले महीने चक्रवात रेमल से त्रिपुरा में काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और आपसी भागीदारी के व्यापक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सामरिक भागीदारी की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एयर इंडिया विमान 182 दुर्घटना में मारे गए 329 लोगों को श्रद्धांजलि दी है। ये दुर्घटना आज ही के दिन 39 वर्ष पूर्व 1985 में हुई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे आतंकवाद के इतिहास में सबसे दुखद घटना बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी भावनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने अपना जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया था। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पौधों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। वे जीवन भर देशभक्त और शिक्षाविद रहे तथा उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रति सदैव संघर्ष किया।
उनका जीवन एक देशभक्त के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में और एक सामाजिक न्याय दिलाने वाले नेता के रूप में हम सब जानते हैं। और बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। वो शिक्षाविद थे, बाद में उन्होंने देशभक्ति के कारण राजनीति में कदम लिया और आज हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान पंजाब है और वर्तमान पश्चिम बंगाल है, यह उनकी ही देन है।
करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय सेना ने लद्दाख में खालुबर युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। देश इस वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ये उद्घाटन समारोह फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के प्री करगिल विजय दिवस समारोह का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित ये स्मारक उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने घाटी को फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। करगिल युद्ध के दौरान दुश्मन सेना ने सीमा के पास स्थित खालुबार घाटी पर कब्जा कर लिया था। कैप्टन मनोज पांडे सहित भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण प्रयासों से इस क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया गया। इन बहादुर सैनिकों के साहसपूर्ण कार्य खालुबार युद्ध स्मारक में अमर है। स्थानीय पुरुषों और महिलाओं ने भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। करगिल विजय दिवस से पूर्व के समारोह के अंतर्गत ब्रिगेडियर ओपी यादव YSM के नेतृत्व में संघर्ष स्थल तक यात्रा भी आयोजित की गई। करगिल से अनायत अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के नजदीक उरी सेक्टर में जारी घुसपैठ रोधी अभियान में एक आतंकवादी ढेर हो गया। रक्षा सूत्रों के अनुसार कल सुरक्षा बलों को बजरंग उरी सेक्टर में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद तलाश अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने विद्युत चालित वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दो नए मानक लागू किए हैं। ये मानक बैटरी की सुरक्षा और क्षमता से संबंधित हैं। नए मानक L, M और N श्रेणियों के बिजली चालित वाहनों के लिए हैं। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और गोवा में अगले चार दिनों तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने बताया कि कुछ हिस्सों में तापमान में वृद्धि होगी।
वेस्ट कोस्ट में जो स्टेट पहले से कर्नाटक है, दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक है और इसमें भी हैवी टू वेरी अभी रहेगा आज जो है 23 को, लेकिन जो वार्निंग है थोड़ा थोड़ा तापमान बढ़ेगा आज से, तो इसलिए आइसोलेटेड प्लेसेस पर ओनली हीट वेव हम लोग येलो कलर का वार्निंग दिए हैं पंजाब और हरियाणा और पश्चिम मध्य प्रदेश में।
इस बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भी ऐसी स्थिति बनी रह सकती है और साथ ही गरज के साथ आंधी आने और बिजली चमकने की भी संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिन के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अगले पांच दिन तक तेज से बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो से तीन दिन के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आंधी चलने और बिजली गिरने की आशंका है। समाचार कक्ष से कनकलता।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज बेंगलुरु में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत पहले दोनों मुकाबले जीत चुका है और इस मैच को जीतकर दक्षिण अफ्रीका का पूरी तरह सफाया करना चाहेगा। ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 के मुकाबले में अफगानिस्तान ने एक रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हरा दिया। जमैका के किंग्सटाउन मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 148 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 19 ओवर और 2 गेंद में 127 रन ही बना सकी। आज अमरीका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ओलंपिक खेलों के टेनिस मुकाबलों में पुरुष सिंगल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी पहले ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इस बीच श्रीजा अकुला विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर चैंपियनशिप के सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाने का आह्वान किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का विषय है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। 1563 अभ्यर्थियों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होंगे। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में तीसरा तथा अंतिम एक दिवसीय मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।